ओम शांति। गुड इवनिंग। तो आपके एमएससी क्लासेस का एक फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट यूनिट है इन रिस्पॉन्स टू वैल्यूज। तो आप सभी ने तो पीजी डिप्लोमो स्टडी किया ही है, तो कैसे स्टडी करना है, कैसे हर एक चैप्टर होता है तो आपको मालूम ही है। तो हर एक चैप्टर में जैसे इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन होता है, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चंस, यूनिट असाइनमेंट हर एक चैप्टर में होती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इन रेस्पॉन्स टू वैल्यूज, इस चैप्टर का नाम है इन रेस्पॉन्स टू वैल्यूज। तो ये चैप्टर स्टडी करने का मकसद क्या है, क्या जरूरी है इस चैप्टर को स्टडी करना, वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बताया गया है, हमने पीजी डिप्लोमो के सेशन में देखा हुआ था कि वैल्यूज क्या है, व्हाट आर वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या है, वो किसी किसी के प्रिंसिपल्स है, कुछ कोई कोई व्यक्ति उन प्रिंसिपल्स के आधार पर अपना जीवन फॉलो करना चाहते हैं, उनको वैल्यूज कहा जाता है, आइडियल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैल्यूज ह्यूमन हार्ट के जो हम बिहेवियर करते हैं उसको ही वैल्यू का डेफिनेशन दिया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह बिहेवियर कर सकता है तो उसको कहते हैं कि हाँ ही इज अ वैल्यूएबल पर्सन। कोई वस्तु, जैसे हमने पीजी डिप्लोमा में देखा कि अलग अलग कैटेगरीज के वैल्यूज को हमने देखा था, अलग अलग कैटेगरीज में देखा तो कभी कभी एक वस्तु की भी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। इसीलिए एक्चुअली एक ही शब्द में अगर वैल्यू को हम डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो वैल्यूज लाई एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम जो बिहेवियर करते हैं वही वैल्यू है। इफ आई बिहेव प्रॉपरली, अगर मैं अच्छी तरह बिहेव कर पाऊं तो वो क्या है, अच्छा वैल्यू है, मेरे में अच्छे वैल्यूज की धारणा है। अगर मैं अच्छा बिहेवियर नहीं कर पा रही हूं तो मेरे में धारणा की कमी है, दैट्स ऑल, दे लाई एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन आज के टाइम पर, आज के जमाने में जब हम देखते हैं, साइंस ने तो बहुत अच्छी तरह से तरक्की तो की है, बहुत इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल हम देख रहे हैं, लेकिन जितना जितना साइंस आगे बढ़ता जा रहा है उतना उतना वैल्यूज घटते जा रहे हैं, वैल्यूज की कमी होती जा रही है, ऐसा है ना। आजकल के लोगों को अगर हम वैल्यूज के बारे में, वर्चुअस के बारे में समझाने जाएंगे तो वो हंसेंगे, क्योंकि दे थिंक दैट वी आर साइंटिफिक। तो साइंटिफिक एज जितना आगे बढ़ता गया उतना वैल्यूज घटते गए हैं। इसीलिए आज की आवश्यकता क्या है कि जितना हो सके हमको वैल्यूज की धारणा करनी ही है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा है कि इन रेस्पॉन्स टू वैल्यूज, हाउ शुड आई रेस्पॉन्ड टू द वैल्यूज, वैल्यूज को मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना है। तो जैसे जैसे साइंटिफिक एज बढ़ता गया, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती गई, वैसे वैसे दूसरा इसका दुष्परिणाम क्या होता गया, ह्यूमन रिलेशंस आर फॉलिंग अपार्ट। आज संबंधों में ना स्नेह है, ना प्यार है, ना सद्भावना है, ना विश्वास है। ऐसे बोलते हैं ना, अगर इस हाथ को मैं विश्वास करूं तो मैं इस हाथ को ना विश्वास कर सकता हूं, इस हाथ को मैं करूं तो दूसरे हाथ पर विश्वास मैं नहीं कर सकता। कोई कोई बोलते हैं ना, मुझे तो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना साइंटिफिक एज की तरफ हम बढ़ते गए, जितना वैल्यूज की धारणा कम होती गई, उतना संबंधों में जो अंडरस्टैंडिंग, जो डीप लव, जो एडजस्टमेंट, जो टॉलरेंस पावर आनी चाहिए था वो नहीं आ सका है। इसीलिए ह्यूमन रिलेशंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। पहले जमाने में हम देखते थे कि 20 लोग 30 लोग एक ही फैमिली में रहते थे ना, आराम से रहते थे 20 लोग, इतने बड़े बड़े फैमिलीज को हम देखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, दो पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, आप एक ही घर में रह के जियो जीवन करो तो भी वो लोग नहीं कर पा रहे। क्यों, वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो एक दूसरे को, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को सहन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ईगो आ जाता है, मैं ही क्यों करूं, मैं भी कोई कम हूं क्या, आप करो। ऐसे करते करते दोनों में क्या होता है, वहां पे रिलेशनशिप्स ब्रेक होते जाते ब्रेक होते जाते ब्रेक होते जाते। फॉरेन कंट्रीज में भी हम देखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो क्या होते हैं, क्या हो जाता है, वो पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते, अपना इंडिपेंडेंस जीवन वो जीना चाहते। तो ऐसे करते करते आजकल हर एक व्यक्ति अकेला बनता जा रहा है, लोनलीनेस। हर एक के साथ रहते हुए भी कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्यों लोनलीनेस का अनुभव हो रहा है, स्नेह प्यार का मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों, इसीलिए ये सब हो रहा है क्योंकि वैल्यूज घटते जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि नो नेबरली फीलिंग इज देयर। आजू बाजू के घर में की के घर में रहते हैं लेकिन वो फीलिंग, चलो अड़ोसी पड़ोसी है, उनको कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ उनको हमको सहायता करनी पड़ी, कोऑपरेशन करना पड़े, तो भी कोई भी करने को तैयार नहीं है। ये सब इसीलिए हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि 1 in every 3 मैरिजेस इन द यूके एंड्स इन डिवोर्स। हर 3 शादियों में एक शादी डिवोर्स में खत्म हो रहा है। 3 शादियों में यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कोई रिसर्च किया गया, उसमें ये रिजल्ट निकला कि 3 शादियों में से एक शादी डिवोर्स में। इसीलिए बाबा अपने शब्दों में क्या कहते हैं, शादी करना माना बर्बाद होना, क्योंकि उसमें अंत में दुखी मिलने वाला है। इसीलिए वहां पर जैसे यूके में और आगे इसका क्या प्रेडिक्शन किया गया है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में 2 शादियों में एक शादी डिवोर्स में एंड होने वाला है। अभी क्या है, 3 शादियों में एक शादी डिवोर्स हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट अभी 20 साल के बाद 2 शादियों में एक शादी। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यूज घटते जा रहे हैं। मेन यहाँ पे इरोजन ऑफ वैल्यूज, क्यों वैल्यूज घटते जा रहे हैं, क्यों वैल्यूज की कमी होती जा रही है, क्यों आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों को खो चुका है, क्यों, कारण क्या है इसका, क्यों हो रहा है सब ड्रामा, बॉडी कॉन्शियस। क्योंकि हम ओरिजिनली कौन है, जो ओरिजिनल कॉन्शियस आई एम अ सोल, वो सोल कॉन्शियस स्थिति में जो स्थित होना है उसको हम भूल चुके हैं। मेन प्रॉब्लम बाबा भी बोलते हैं कि सभी दुखों का कारण है देहाभिमान। ओरिजिनल कॉन्शियंस जो है, ओरिजिनली जो सोल कॉन्शियस का अभ्यास हमको करना है, उस सोल कॉन्शियस को संबंधों में हमको धारण करना है, वो हम नहीं कर पा रहे। इसीलिए क्या हो रहा है, संबंधों में रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी नेबर में प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, विश्वास नहीं है, भावनाएं नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। क्यों, इन रेस्पॉन्स टू वैल्यूज, वैल्यूज को हम अच्छी तरह रेस्पॉन्ड क्यों करें, इसीलिए इंट्रोडक्शन में ये बताया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जैसे आता है ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इस लेसन को हमको स्टडी करना है। तो इस लेसन स्टडी करने के बाद हमको क्या क्या नॉलेज मिलेगी, वैल्यूज और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम जान पाएंगे, सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। इस चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब दूसरों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देने हैं। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कोई भी काम है, कोई भी सेवा है, कोई भी कार्य है, उस आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन दूसरा क्या है, इफेक्टिव डेलीगेशन, दूसरों पर कार्य को सौंपना, उन पर विश्वास रखना और उनसे कार्य लेना। वो कार्य जब तक पूरा ना हो तब तक रेस्पॉन्सिबल मैं ही हूं, लेकिन कार्य उनको दे करके उस पर थोड़ा अटेंशन रख करके, उन पर विश्वास रख करके उनसे काम लेना होता है। तो दैट इज इफेक्टिव डेलीगेशन, वो भी इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन किया गया है, कैसे इफेक्टिव डेलीगेशन है वो भी आप समझ पाएंगे, और इफेक्टिव डेलीगेशन के अलग अलग स्टेप्स कौन से हैं ये भी हमको मालूम पड़ेगा। देखिए, डेलीगेशन का मतलब है दूसरों को कार्य सौंपना। जैसे मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, या मैं फॉर एग्जांपल मैं एक मैनेजर हूं, तो मैनेजर सारा कार्य खुद तो नहीं करता है ना, क्या करता है वो, दूसरों को कार्य को सौंपता है, डेलीगेट करता है, देता है काम, सौंपना। फिर इफेक्टिव मतलब कैसे, जैसे दूसरों को हमने काम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं ना दैट इज डन, उनको दे दिया हमने काम, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी तरह से उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उन पर अटेंशन रखनी पड़ती है, उन पर हमको विश्वास रखनी पड़ती है, बीच बीच में देखना पड़ता है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इफेक्टिव डेलीगेशन का मतलब है कि इफेक्टिवली कैसे युक्ति से उनसे हम काम लेंगे, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है कि क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। जैसे 1.1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा, 1.2 था ऑब्जेक्टिव्स, और 1.3 है क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज की क्लैरिटी आज क्यों नहीं है, क्यों वैल्यूज के बारे में लोग कंफ्यूज है, क्यों ऐसे हो रहा है? वैल्यूज के बारे में हम कभी भी किसी को कुछ बोलेंगे, कुछ भी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच झूठ की तरह दिखाई देता है और झूठ सच की तरह दिखाई देता है। इसलिए हम बाबा भी मुरलियों में बोलते हैं ना, सभी मूंझे हुए हैं, सभी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं। इसलिए क्यों वैल्यूज के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है? मेन कारण सच झूठ हो रहा है और झूठ सच निकलता जा रहा है। राइट टू बी रॉन्ग एंड रॉन्ग टू बी राइट। और जो गलत है, जो रॉन्ग है, जो झूठ है, उसको ही कंप्लीटली सही है, सच है, ऐसा प्रूव किया जा रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दुनिया में नहीं चल सकते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं हम ले सकते हैं। ऐसे ही आप जैसे वैल्यूज, आप जैसे आध्यात्मिकता के मार्ग पर हम चलना शुरू करेंगे तो काम नहीं हमारा होने वाला है। ऐसे झूठ के रास्ते पे ही चलने से ही हमारा काम हो सकता है, ऐसी नेगेटिव भावनाएं लोगों में बसी हुई है। जैसे एक घर में क्या होता है, पापा को पूछ के किसी कोई व्यक्ति आता है तो उस इस जो फादर होता है उसको, जो व्यक्ति आया हुआ है उसको पैसा देना होता है, तो बच्चे को क्या कहता है वो? क्या कहता है बच्चे को? जो आए हुए हैं उनको बोल दो कि पापा घर में नहीं है। तो क्या सिखा रहे हैं वो? बच्चा भी सीखेगा, चलो झूठ पापा ने सिखाया, फादर ही जब झूठ बोल रहे तो मैं भी झूठ कह सकता हूँ। इसीलिए सही झूठ हो रहा है और झूठ सही हो रहा है, इसीलिए क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज हमको नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी दुनिया, सारी दुनिया यहाँ पे बताया गया है कि कैरोल गिल एक्सप्लोर्स द इनटैंजिबल सब्जेक्ट ऑफ वैल्यूज। कैरोल गिल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस वैल्यूज के बारे में यही कहा है कि पूरी दुनिया जो है एक टॉपसी टर्वी बन गया है। उसका मतलब कन्फ्यूज्ड, सभी बातों को मिला के खिचड़ी जैसा बन गया, तो कुछ हमको क्लैरिटी मालूम होता है? उल्टा, हाँ उल्टा हो गया है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि देखिए हमको तो एक सच्चा मार्ग मिल गया है जो ईश्वर हमको दिखा रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे। लेकिन जो दुनिया वाले हैं, जो जिसको अभी तक बाबा का संदेश परिचय नहीं मिला है, जो अभी तक बाबा के नहीं बने हैं, उन बेचारों का हालत क्या होगा, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। ये व्यक्ति जो बोल रहे है वो भी सही, दूसरा व्यक्ति जो बोल रहे है वो भी सही, तीसरा व्यक्ति जो बोल रहे है वो भी सही, वहां भी भगवान है, यहाँ जाने से अच्छा होगा, वहां जाने से अच्छा होगा, इसीलिए स्टम्बलिंग अराउंड, यहाँ वहां भटक रहे हैं। इसीलिए वो कैरल गिल जिसने कहा है, उसने यही बोला है कि पूरी दुनिया जो है, सारा वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड एक कन्फ्यूजन बन गया है। बहुत अनेक प्रकार के सब्जियों को डाल के खिचड़ी बना देंगे तो क्या होता है, क्या चीज बनी है, वही उस चीज का हमको क्लैरिटी नहीं मिलती। ऐसे ही इतनी सारे मत, इतनी सारे पंथ, इतनी सारे डायरेक्शंस, इतनी सारे दुनिया में क्या 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 हो रहा है, उन सब का मिला के एक मेस जैसा बन गया है, कन्फ्यूज्ड स्टेट हो गया है। तो वायलेंस, हिंसा जो करना कॉमन हो गया है, किसी को दुख देना कॉमन हो गया है। जैसे लौकिक में हम देखते हैं ना, किसी को गुस्सा करके उनको कुछ फील भी नहीं होता है। हमको गलती से भी कभी किसी को कुछ स्ट्रिक्टली या जोर से बोलना पड़े तो भी बाद में मैं तो सोचती हूँ, पता नहीं ऐसे मुझे हमको नहीं कहना चाहिए था, शायद मैंने उनको दुख दिया। लेकिन बाहर की दुनिया में हम क्या देखते हैं, जोर से बोलना, गुस्सा करना, हिंसा करना, डांटना, मारना, पीटना। जैसे टेररिस्ट होते हैं, खून करने वाले होते हैं, उनके लिए तो जैसे हम रोज रोटी खाते हैं ना, ऐसे वो लोग रोज क्या करते हैं, खून करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, तो हिंसा जो है यहाँ पे है एक कॉमन हो गया है। जैसे रोज खाना खाना एक कॉमन चीज है ना, ऐसे ही हिंसा करना, मारना, पीटना, खून करना, चोरी करना, दुख देना, ये क्या हो गया है? कॉमन हो गया है। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जब दूसरे किसी व्यक्ति को खून करता है तो उसके मन की स्थिति क्या होगी उस समय? कितना वो इरिटेट होके, कितना दुखी होके, कितना उसका मन की कंडीशन कितनी नेगेटिविटी में गई होगी ताकि वो दूसरे व्यक्ति को खून कर रहा है। तो शो जब पैदा हुआ तब से तो ऐसा नहीं था ना, वो पैदा होते ही कोई खूनी या चोर नहीं बनता है ना। ऐसे परिस्थितियां उसके मन में आती है, एक नेगेटिविटी शुरू होती है, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, ऐसे करते 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 एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है, एक विशेष साइकिल बन जाती है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते। तो वो सुख उनको अच्छा खुशी किस में वो ढूंढते हैं? दुख देने में ही, खून करने में ही, चोरी करने में ही वो खुशी ढूंढना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए कितना अच्छा कहा गया है कि वायलेंस हैज बिकम अ कॉमन प्लेस, दुख देना, हिंसा करना सहज हो गया है। हंगर, जहां पर भूख ही मरने वाले, पावर्टी, सेल्फिशनेस, ग्रीड, वो भी बहुत हो गया है। दुनिया में कितने तो बच्चे रोज बिना खाना मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। तो हमको 10 मिनट 15 मिनट भी अगर भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है? कब हम भोजन करें? तभी हमको तसल्ली मिलेगी जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो एक व्यक्ति, कोई भी बच्चा भूखा बिना खाना मर ही गया तो कितना वो सहन कर लिया होगा, आप सोचिए। तो वो भी कॉमन हो गया है, पावर्टी भी कॉमन हो गया है, सेल्फिशनेस। तो इसीलिए कहा जाता है ना, ह्यूमन नीड के लिए नेचर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ह्यूमन ग्रीड के लिए नेचर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, मैं अच्छा रहना है, मेरे फैमिली अच्छे रहना है, बस हम चार ठीक रहे तो हमको बाकी कुछ सोचना ही नहीं। पड़ोसी में क्या हो रहा है, पड़ोसी में कितना दुख है, उसकी चिंता मुझे नहीं करनी। सेल्फिशनेस, मैं ठीक रहूं बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। और ग्रीड भी बहुत ज्यादा हो गया है। इन सब कारणों से आज क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज इंसान में देखने को हमको नहीं मिल रहे हैं। और भी इसके कंटिन्यूएशन में दिया गया है कि ह्यूमन बिहेवियर कंटिन्यूज टू बिकम मोर एंड मोर विशियस। जैसे बाबा बोलते हैं ना, विकारी गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हर जो कर्म वो करते हैं उनके हर बिहेवियर में ये विकारी गुण नजर आ रहे हैं। जो भी कर्म वो करते हैं, या तो लोभ के वश होके करते हैं, या तो मोह के वश होके करते हैं, या तो अहंकार के वश होके करते हैं, या तो काम के वश होके करते हैं। तो जो श्रेष्ठ कर्म करना है, जो अच्छे कर्म करने हैं, वो कर्म नहीं हो रहे। जो भी ह्यूमन बिहेवियर करते हैं, जो भी कर्म वो करते हैं, जो भी वो संस्कार अपना बना रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? विशियस, विकारी। जैसे जहर होता है ना, जहर एक बूंद भी हम पियेंगे तो भी वो हमारे लिए डेंजर है, एक ग्लास में पियेंगे तो भी हमारे लिए वो डेंजर है। इसीलिए छोटे मोटे काम से लेकर के, संकल्प से लेकर के, मनसा वाचा कर्मणा, जब सवेरे से उठते हैं रात को सोने तक जो भी कर्म करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, जो भी शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, सब विकारों के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। और वंडरफुल बात यह है कि वो उनसे बाहर भी नहीं आना चाहते, है ना? इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी? और जो आनंद खुशी का अनुभव करना है वो उसी में कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत होकर जो कर्म कर रहे हैं उसी में वो खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उसी में वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम किसी को कभी बाबा का परिचय देते हुए बताते हैं कि दुनिया में कितना दुख है, हर एक व्यक्ति दुखी है, तो बोलते हैं हमको कोई दुख नहीं हम जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जीवन, मुझे अच्छा पति मिला है, बच्चे हैं, माँ बाप है, इसीलिए मैं बहुत सुखी हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या, वो सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? उनको सुख का अनुभव कहाँ हो रहा है? वो विकारी जीवन में ही, विकारों के वशीभूत होकर के जीवन जी रहे, उसी में ही उनका सुख का अनुभव हो रहा है। उनके ह्यूमन राइट्स और सूक्ष्म, जो स्थूल में कर्म कर रहे वो भी विशेष है, और सूक्ष्म में जो संकल्प करते हैं, बहुत लेवल्स होते हैं ना, हमारे मन में ही मन को ही जब हम स्टडी करेंगे तो उसके बहुत अलग 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 प्रकार के लेवल है। तो हर एक लेवल पर हम जब जाएंगे अंदर अंदर गहराई में, जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना हम मन को अच्छी तरह स्टडी कर पाते हैं। तो जो भी कर्म वो लोग कर रहे हैं सब यहाँ पे बताया गया है कि विशेष कर्म ही कर रहे हैं। और आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अपने को बचाने के लिए, जैसे कोई ऑफिस है, कोई जॉब है, अपने पोस्ट पोजीशन को, अपने सीट को फिक्स करने के लिए, अपनी जगह को कंफर्म करने के लिए उनको दूसरों के पीठ पर मारना ही पड़ता है। अच्छा रहेंगे हम, बहुत पोलाइट होके रहेंगे, बहुत हम्बल होके रहेंगे तो ओवर पावर, दे विल ओवर पावर ऑन मी। बहुत मैं हम्बल रहूं, बहुत स्वीट रहूं तो दुनिया में नहीं चल सकता है। इसीलिए यहाँ पे बताया कि ऐसा हो गया कि कैसे भी मुझे जीना है, कैसे भी मुझे पोस्ट पोजीशन पकड़ के रहना है, इसके बिना कोई गुजारा ही नहीं है। क्यों? इसीलिए क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज आज हमको नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि मुझे मालूम है मैंने गलती किया है, लेकिन मैं प्रूव क्या करने के लिए कोशिश करूंगी, क्या प्रूव करने के लिए मैं कोशिश करूंगी, मैं राइट हूं। लेकिन एक कहावत ऐसे कहा जाता है ना कि दूसरों की गलती को भी मेरी गलती मानना चाहिए, किसी पर हमको दोष नहीं देना है, लेकिन जो मैंने गलती किया है उसको भी मैं राइट हूं। क्योंकि एरोगेंट, मैं क्यों हार मानना है, मुझे क्यों हार मानना है, मुझे क्यों झुकना है, मुझे क्यों मोल्ड होना है, मैं ठीक हूं, मैं राइट ही हूं, दूसरे व्यक्ति ने ही गलत किया हुआ है, ऐसे हम आर्ग्यू करते हैं ना, इसी के वजह से आज क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज नहीं हो पा रहा है। और जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो सब यहाँ पे बता है कि डर्ट एंड मड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब छिप गया है। जैसे क्लाउड, अगर हम मेरे सामने अभी क्लाउड आ जाए तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, ऐसे ही जो आध्यात्मिकता है उसके सामने मटीरियलिस्टिक का एक बादल आ गया है, बादल छा गया है। इसके वजह से लोग उस बादल को हटा करके उनको खुशी घूमने में, फिरने में, शॉपिंग करने में, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटीरियलिस्ट चीजों में, मोबाइल ले लिया, कार ले लिया, दूसरी कुछ हमने बंगला खरीद लिया, खुशी मिल गई, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही सुख का वो अनुभव कर रहे हैं, वो एक बादल जैसा चाहे। उनको मालूम नहीं है कि सब एक मालूम है, एक जो भी चीज है, जो भी मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे मैं भाग रही हूँ, ये सब मुझे छोड़ के एक दिन जाने वाला है, मालूम है, फिर भी वही मटीरियलिस्टिक पीछे वो पड़े हुए है। और हर एक व्यक्ति आज अपने विश्वास को खुद के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, जिसके साथ वो जॉब कर रहे हैं उनके प्रति, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके प्रति आज हर एक व्यक्ति ट्रस्ट को खो चुका है। तो वैल्यू एबल और नॉट मेक चेंज पॉसिबल, अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आखिर में चेंज पॉसिबल है या नहीं, परिवर्तन साध्य है या नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। हाँ बोलिए ना बाबा, क्या कर रहा है, हो सकता है ना, ईश्वर वही कार्य कर रहा है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सो यहाँ पे बताया कि कैसे हम चेंज को पॉसिबल कर सके, कैसे परिवर्तन को हम ला सके, जितना हो सके हमको दूसरों को, ये पीजी डिप्लोमा एमएससी हम कोर्स क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे कोर्सेस को हम, मैं भी इन वैल्यूज को सीख पाऊं और दूसरों को भी इन वैल्यूज के बारे में बता पाऊं। हमारा लक्ष्य ही है कि अन्य आत्माओं भी इन वैल्यूज को हमको भरना है, उनको भी वैल्यूज के नॉलेज हमको देनी है, इसी लक्ष्य से लेकर के हम एक कोर्स को कर रहे हैं ना, ताकि हम बोल सके इसमें हमने डिग्री लिया हुआ है, इसको ऑफिशियली माना गया है दुनिया में। आज को इतना इसको कोई महत्व नहीं दे पा रहे क्योंकि किसी को इसके महत्व के बारे में मालूम नहीं, लेकिन कल हम किसी के सामने भी बोल सकते हैं कि इस वैल्यूज के ऊपर हमने डिग्री किया है, ग्रेजुएशन की हुई है, डिग्री ली हुई। इसीलिए इसका मकसद ये कि दूसरों को हमको, जैसे बता रहे थे कि जो भी इस वैल्यूज कोर्स को करेंगे उनको स्कूल्स और कॉलेजेस को एडॉप्ट करना है, तो जब हम उनके पास जाएंगे, हमारे पास डिग्री होगी तो हम उनको बता सकते हैं ना, हमारे पास ऑफिशियली वी आर क्वालिफाइड टू टीच वैल्यूज, तो तभी चेंज पॉसिबल हो सकता है कि जब हम दूसरों को इसके बारे में समझा सकेंगे, हमारा समय और शक्ति दोनों यूज करके जब इसको हम समझाएंगे तभी परिवर्तन आ सकता है। हाँ, बाबा भी यही बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा हमको सेवा करनी है। लेकिन जो हम कहते हैं जैसा जीवन हम जीते हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ जाते हैं ना। बहुत बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन जब मुझे उन वैल्यूज की धारणा जीवन में करने का समय आता है उस समय क्या होता है, मुश्किल का अनुभव होता है। दैट इज वाई चेंज इज नॉट पॉसिबल। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं जो बोलती हूँ और मैं जो कर्म करती हूँ, मैं जो भाषण वैल्यूज के बारे में कर रही हूँ और मेरा जीवन, जो दोनों को जब हम देखेंगे तो कितना अंतर है। जैसे हम कोर्स कराते हैं, किसी को क्लासेस कराते हैं, उस समय बोलना आसान है कि आत्माभिमानी बनना है, शिव बाबा को याद करना है, मैं कितना कर रही हूँ। तो इसीलिए तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक मेरे में वो कंप्लीट परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज नहीं आएगी, तब तक दूसरों में भी वो चेंज लाना मुश्किल है। इसीलिए बाबा क्या बोलते हैं, डेट फिक्स करना क्या है, आप लोगों का काम है। मैं तो रेडी हूँ आप लोगों को ले जाने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो परिवर्तन ईश्वर हमसे चाह रहा है वो परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे। कथनी और करनी में हमारे जीवन में अभी तक समानता दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए चेंज पॉसिबल, परिवर्तन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे बताए कि कोई अगर व्यक्ति कहेगा मैं अपने ही रूल्स, अपने ही रेगुलेशंस, मुझे जो ठीक लगता है उसी आधार पे मैं अपना जीवन करता हूँ, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आज नहीं तो कल उसको पता चलेगा कि जैसे अभी हम ज्ञान के पहले वाले जीवन को याद करेंगे तो हमको कैसा लगता है, गलत लगता है ना हमको ये अपना। अरे मैंने उस समय अगर मुझे बाबा मिल जाते, उस समय अगर मुझे ज्ञान मिल जाता तो और मैं अच्छा आगे बढ़ सकती थी, ऐसा लगता है ना। तो मैं खुद को धोखा तब दूंगी जब मनमत, इसी को मनमत कहा जाता है, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट वैल्यूज, जो मुझे ठीक लगे उसी आधार पे मैं जीवन जीऊंगा, जो मुझे अच्छा लगे ऐसे ही मैं चलूंगा, मुझे कोई वैल्यूज की जरूरत नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति अगर बात करेगा, ऐसे कोई व्यक्ति अगर जीवन जिएगा तो वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है, उससे ही स्ट्रेस, टेंशन, अशांति का अनुभव होता है। टेंशन कब आती है? टेंशन का अनुभव आपको कब होता है? गलत काम, अपने मन मर्जी कोई काम करे, जो श्रीमत, जैसे हमको भी जब हम बाबा की बातों को नहीं मानेंगे, अपने मनमत पर कभी चलते हैं तो उस समय नेचुरली दुख का अनुभव होता ही है, तो उसी से ही स्ट्रेस का अनुभव होगा, टेंशन का अनुभव होगा, अशांति का अनुभव, ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ मैं ही ठीक हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है और मैं जो कहती हूँ वही होना चाहिए, मैं तो मनमत पर चल ही रही हूँ और दूसरों को भी मैं क्या प्रेरणा दे रही हूँ, आप भी इसी मनमत के रास्ते पर, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वही सही, उसी रास्ते पर आपको भी चलना है। मैं भी नेगेटिव रास्ते में जा रही हूँ और आने वालों को भी नेगेटिव रास्ते के लिए ही मैं निमंत्रण दे रही हूँ, इसीलिए खुद भी मैं अशांत और दूसरों को भी अशांति का अनुभव ही मैं करा पाती हूँ। कोई कोई व्यक्ति होते हैं उनके पास अब जाएंगे ना, गलत बातें, अशांत का वातावरण, स्ट्रेसफुल बातें, टेंशनफुल बातें, गॉसिप्स, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं उनके पास। यहाँ वहां की बातें बोलेंगे, परचिंतन की बातें बोलेंगे, दूसरी दूसरी बातें, तो वो खुद भी बेचारे शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे, खुद भी अशांत है और हमको भी उनके संबंध संपर्क में आने से अशांति का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि दे आर देर ओन मास्टर्स। हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हमको कोई कहने वाला नहीं है, हमको किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है, हमको जो ठीक लगे, हमको जो अच्छा लगे उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं, इसीलिए खुद भी स्ट्रेसफुल है। वो लोग सुखी रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं? वो खुद भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और दूसरों से भी संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और उनका इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स जो है, जिसी से बात करना, किसी से संबंध संपर्क में आना, वो भी उनका ठीक नहीं रहेगा। मतलब उनके वो उनको क्या लगता है, मैं ही ठीक हूँ, दूसरे जो भी हैं कोई भी ठीक नहीं है। तो संबंध नेचुरल जो वो भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, उस समय क्या लगता है, किसी से भी हम अच्छा संबंध नहीं रख सकते हैं ना। तो उनके इंटरेक्शंस जो है, किसी से बात करने का तरीका जो है, किसी से संबंध निभाने के तरीका जो है, सब गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बताया कि क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इन्हीं कारणों से आज हम परिवर्तन को नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो इंटीग्रिटी, एकदम गहराई की इंटीग्रिटी जो है, उसके आधार पर यूनिवर्सल वैल्यूज को फॉलो करके सच में एक जीवन जिया जाएगा, ये पॉसिबल है? वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करके, सच्चाई से, सफाई से, प्रामाणिकता से, हॉनेस्टी से, इंटीग्रिटी को फॉलो करते हुए जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं। तो उसके लिए बहुत, अगर आप बहुत सच्चाई मार्ग पर चलेंगे तो आप चल ही नहीं पाएंगे इस दुनिया में। कहीं आप जाते हैं, कोई ऑफिस में जाएंगे, आपको कोई काम कराना होता है, वो व्यक्ति काम नहीं कर रहे तो उसको टेबल के नीचे क्या करना पड़ता है? देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, हमको वहां पे 100, 200, 500 जितना तो पैसा देना पड़ेगा। तो सच में पॉसिबल है, सच में सच्चाई, सफाई, हॉनेस्टी 100% में इंटीग्रिटी को कम्प्लीटली फॉलो करके मुझे जीवन जीना है, हो सकता है? कोई एग्जाम्पल है जो मैं ऐसे सच्चाई, सफाई, हॉनेस्टी से कोई जीवन जी रहे, उनके एग्जाम्पल है? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि पॉसिबल है। हम खुद एग्जाम्पल है, ऐसा है? अच्छा अच्छा, वही मतलब चैलेंजेस आएंगे, जैसे हमने पीजी डिप्लोमा में देखा ना, अनेक प्रकार के चैलेंजेस को हमको फेस करना पड़ेगा अगर मैं सच्चाई के मार्ग पर चल रही हूँ तो। बहुत मुझे सहन करना होगा, एडजस्ट करना होगा, झुकना होगा, मोल्ड करना होगा, क्योंकि कभी कभी लगता है ना, जो झूठ बोल रहे, जो कपट कर रहे, वही आराम से रह रहे, ऐसे लगता है ना, वही खुशी से रह रहे, लेकिन टेम्पररी है, अल्पकाल के लिए उनको खुशी का अनुभव भले हो रहा होगा, अल्पकाल के लिए वो बहुत मस्ती में रह रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सदा खुशी, सदा संतोष का अनुभव करना है तो हमको इंटीग्रिटी और यूनिवर्सल वैल्यूज के आधार पर ही अपना जीवन जीना होगा। इसीलिए इसके लिए इनर एक्सप्लोरेशंस और वैल्यूज को पहचानना है। वैल्यूज कौन से है, क्या है, उनको समझना है, उनको जानना है, उनको पहचानना है, और उनके आधार पर ही मेरा जीवन होना चाहिए, तब ही ये पॉसिबल हो सकता है। और सच, हॉनेस्ट जैसे बताया, प्रामाणिक रहना, हमारे इंटेंशन जो है, किसी से हम बात करते हैं, किसी से कुछ काम लेते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी के भी संबंध संपर्क में हम आते हैं, किस इंटेंशन से हमें कर रहे हैं, किसी से कभी कभी क्या करेंगे, हम कुछ काम लेना होता है तो बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे कि उनसे काम लेना है, उस समय हम हॉनेस्ट हैं? एम आई हॉनेस्ट एट दैट टाइम? काम लेना है मुझे, बस किसी से कुछ लेके आना है, इसीलिए मैंने बहुत प्यार से, स्नेह से, शांति से बात की, काम होने के बाद जैसे मैं थी वैसे। वो जो गहराई में परिवर्तन लाना है, मेकिंग चेंज पॉसिबल, परिवर्तन को पॉसिबल करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मुझे हॉनेस्ट रहना है मेरे इंटेंशंस पर। कोई कुछ भी करे, कोई क्या भी करे, कैसे भी चले, गलत चले, झूठ बोल के चले, कुछ भी करे, लेकिन मुझे अपने इंटेंशन, मुझे अपने कर्मों पर, मुझे अपने शब्दों पर, मुझे अपने संकल्पों पर हॉनेस्ट रहना ही है, प्रामाणिक रहना ही है, तब ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो जैसे बताया कि मुझे अपने गहराई में जाना है, खुद को देखना है कि वैल्यूज कितने हैं, कितने वैल्यूज को मैं धारण कर पाई हूँ, कितने वैल्यूज मेरे जीवन में है, सचमुच उन वैल्यूज के आधार पर मैं अपना जीवन जी रही हूँ नहीं जो इनर सर्च है, बाहर आउटर सर्च नहीं, एक्सटर्नल चीज नहीं है। एक्सटर्नल जो स्थूल प्राप्ति है वो तो आज मिलेगी, कल मेरे से वो बिछड़ के चली भी जाएगी, जैसे ये शरीर ही मेरा नहीं है, जस्ट टेम्पररली हम इसमें भले पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन शरीर मेरा है क्या? मेरा है ही नहीं है, आज है कल ना भी हो सकते, दैट इज एक्सटर्नल थिंग। लेकिन इनर सर्च क्या है? वैल्यू इसको खोजना है, अंदर मुझे जाना है, अपने ही अंदर, अपने ही भीतर मुझे जाकर के देखना है कि कितने वैल्यूज मेरे जीवन में है, दैट इज द इनर सर्च। तो उस इनर सर्च क्या होता है, मेरी जो ओरिजिनल रियलिटी है उसके बारे में मुझे मालूम पड़ेगा, मेरे में जो विशेषताएं हैं, मेरे में जो क्वालिटीज है। जैसे हम बहुत बाहर मुक्ता में आएंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे, बहुत सारा दिन बाहर मुक्ता में ही रहते हैं, तो अंदर मेरे में विशेषताएं क्या है, क्वालिटीज क्या है, उसको हम नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, एकांत में जाओ, अपने आप से बातें करो, अंदर अपने जाओ, अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को बाहर लाओ। अगर मेरे में एक विशेषता है कि मैं अच्छा कुछ चित्र बना सकती हूँ, तो कोई कोई प्रोग्रेस ना बन तो विशेषता कार्य में आएगी नहीं, आएगी विशेषता अंदर की अंदर ही रह जाएगी। इसीलिए अगर मुझे मेरी विशेषताओं को यूज करना है, मुझे अपने गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाना है, तो इनर सर्च, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मुझे देखना है कि क्या है, क्या नहीं है, कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है, विशेषताएं क्या है, वर्चुस क्या है, क्वालिटीज क्या है, क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे। अभी अभी 31 दिसंबर पर जब बाप दादा की पधरामणी हुई थी, तो बाबा क्या बोल रहे थे, आज आप डिसीशन लो कि मुझे कुछ छोड़ना है, कुछ आगे बढ़ना है और लेके जाना है। बाबा ने बोला ना, इस हॉल में 12 बजे जब जाएंगे, तो हॉल से जो आपको नहीं चाहिए उसको यहीं छोड़ के जाओ। तो इसीलिए जब इनर सर्च हम करेंगे तभी ये पॉसिबल हो। करंट रियलिटी क्या है, करंट जो प्रेजेंट है, मैं जो कर रही हूँ, जो मेरा जीवन है, उससे भी जो हायर लेवल का है वो हम उस हायर लेवल को हम पहुंच सकेंगे, उस हायर लेवल तक हम जा सकेंगे जब हमारे में इनर सर्च होगी, उससे करंट रियलिटी हमको पता चलेगी। तो लेकिन क्या है, जब हम इनर सर्च नहीं करेंगे, करंट रियलिटी के बारे में हम नहीं जानेंगे, तो क्या होगा, देखिए, जीवन नो पर्पज, जीवन को कोई उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं, लक्षण नहीं, नो एम, किस रास्ते पे मुझे जाना है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है जीवन में, क्या बनना है, उसके बारे में मालूम नहीं। उसके बाद कहे मीनिंगलेस एंटिटी, कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा जीवन बन जाता है। उससे क्या होता है, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ, वही उसका कोई मीनिंगलेस, कोई अर्थ ही नहीं है, अस्तित्व बन जाता है। फिर उससे व्यर्थ संकल्प चलेंगे, उससे स्ट्रेस का अनुभव होगा, उसके बाद कोई कोई उस स्ट्रेस को दबाने के लिए, उस स्ट्रेस को छुपाने के लिए एडिक्शन, उनको स्मोकिंग करने में ही, दारू पीने में ही सुख मिलता है, वो नहीं जब पीते तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने स्ट्रेस को दबा रहे, अपने टेंशन को दबा रहे, अपने दुख को दबा करके टेम्पररी सुख का अनुभव करने लग पड़ते हैं, मेंटल डिप्रेशन उससे आता है। लास्ट में जाकर के जब किसी से भी उनको अच्छा नहीं, मतलब किसी से, जैसे एडिक्शन, स्मोकिंग किया, वो ड्रिंक्स किया, उससे भी खुशी नहीं मिली, उससे भी उनको अच्छा नहीं लगा, तो लास्ट में क्या करेंगे, सुसाइड। सुसाइड रेट्स आजकल क्या हो रहे हैं, बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा भी मुझे कौन से रास्ते में जाना है, इतना मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, इतना अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, बस अभी मुझे तो जाने। लेकिन वो सुसाइड वे अल्टीमेट कोई मार्ग नहीं है, दैट इज नॉट द अल्टीमेट वे, वो उनको मालूम नहीं रहता है, चलो सुसाइड करने से तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, ऐसे समझ करके वही मेरे लिए एक अंतिम रास्ता है, वही मेरे लिए एक डेस्टिनी है करके उस डिसीजन पर वो पहुंच। ये जो साइकिल बना है वैसे बुक में नहीं है, लेकिन हम आपको जैसे याद रखने के लिए आसान हो और एग्जाम में लिखने के लिए भी आपको इजी हो, उस हिसाब से बनाया है, वहां दिया था ऐसे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो मैंने सोचा ऐसे करेंगे तो आपको याद रखना भी इजी होगा और एग्जाम में प्रोड्यूस करना भी आसान हो जाएगा, इसीलिए साइकिल बनाया है। तो जब मुझे अपने ही जीवन के प्रति वैल्यू नहीं रहेगी, अपने ही जीवन को मैं कोई महत्व नहीं दे रही हूं, तो नेचुरली दूसरों के जीवन के प्रति भी मुझे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए कहा जाता है गिव रेस्पेक्ट एंड देन टेक रेस्पेक्ट। पहले टेक रेस्पेक्ट है, पहले है टेक रेस्पेक्ट एंड देन गिव रेस्पेक्ट, ऐसा तो नहीं है ना। पहले गिव रेस्पेक्ट, पहले मुझे अपने जीवन के प्रति, मैं खुद को पहले मुझे वैल्यू देना है, अपने जीवन को मुझे सबसे पहले। हाँ, जैसे नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। हम हमेशा जैसे पीजी डिप्लोमा में देखा ना, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, जेलसी, किसी किसी का ना, हमको दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम किसी ना किसी से अपने को कंपेयर करते हैं। उनके पास वो चीज है, मेरे पास ये नहीं है। उनके पास कार है, मेरे पास नहीं है। उनके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना, जेलस करना, ये तीन चीजें जब हम करते हैं तो अपने जीवन के प्रति हमको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का अनुभव होता है। जो मेरे सामने प्राप्तियां हैं, इतनी सारी प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों का कोई मुझे अनुभव हो ही नहीं रहा है। मन बुद्धि मेरे सारे संकल्प किसके प्रति चल रहे हैं? जो मेरे पास नहीं है दूसरे व्यक्ति के पास है, जो स्टेटस है, पोस्ट है, पोजीशन है, जो भी है, मुझे जो मिला है वो मुझे दिख ही नहीं रहा है। जो दूसरों के पास है, दूसरों का पोस्ट है, दूसरों का पोजीशन है, उनके साथ जब मैं कंपेयर कर रहा हूं अपने को, तो क्या होगा, मेरा जीवन मुझे नीचा दिखाई देगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू होगी। तो इसीलिए वहां से ही वायलेंस, टेररिज्म, वार, ये सब चालू हो जाता है। जैसे 2001 में यूएसए में जब WTC पर अटैक हुआ था, तो वो जो अटैक इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनका लक्ष्य है कि पूरे वर्ल्ड में हमको अपना ही धर्म को रखना है, बाकी जो भी धर्म है उनको विनाश करना है। लेकिन ये पॉसिबल है? ईश्वर क्या कर रहा है? जो भी अनेक धर्म है उनका विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करे। लेकिन वो उल्टा क्या लिया है, हमको सभी धर्मों का विनाश करके अपना ही धर्म को हमको स्थापन करना है। उसी लक्ष्य से वो पूरी दुनिया को विनाश करने के लिए तैयार हो चुके। इसीलिए तो 2001 में WTC पर उन्होंने अटैक किया। दैट इज एन एग्जाम्पल, दैट इज अ साइन ऑफ टेररिज्म। कहीं रहते हैं, कहीं जंगलों में भटकते हैं सारा दिन, जैसे हम सारा दिन सेवा कैसे करें, योग कैसे करें, हम हाँ, लेकिन क्या है, ये तो ईश्वर का कार्य है ना वैसे, लेकिन वो तो इंसान का प्लान है। हमारे और उनमें ये भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारा जो अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की पालना का जो कार्य है वो ईश्वर कर रहा है, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। लेकिन उनका जो प्लान है वो साधारण इंसान, वो भी नेगेटिव मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनका प्लान है। जैसे मैंने कहा ना कि सारा दिन हम ये सोचते हैं कि क्या सेवा करें, कैसे सर्विस को बढ़ाना है, कैसे से पुरुषार्थ करना है, लेकिन सारा दिन उनका प्लान क्या चलता है, कहाँ जाना है, किसको मारना है, कौन से बिल्डिंग पर अटैक करना है, कौन से एयरपोर्ट पर बम रखना है, ऐसे नेगेटिव संकल्प उनके सारे दिन चलते रहते। इसीलिए वायलेंस, हिंसा, टेररिज्म, वार, पूरा उनका लाइफ ही जंगलों में भटकेंगे, पहाड़ों में भटकेंगे। उनका कोई घर होता है उनका अपना टेररिस्ट का? कैसे रहते होंगे, कहाँ खाते होंगे, कहाँ सोते होंगे, कैसा तो उनका जीवन होता होगा ना। इसी धर्म भी नहीं, उनका जीवन जीवन ही नहीं है। जो साधारण एक ह्यूमन बींग, इंसान को जो जीवन जीना है, वो जीवन को भी बेचारे वो नहीं जी पाते, इसीलिए ये सब बढ़ रहा है। तो जीवन का मतलब बहुत सुंदर यहाँ पे दिया गया कि जीवन का मकसद क्या है, लाइफ फॉर व्हाट, लाइफ इज मेंट, लाइफ इज मेंट फॉर व्हाट, जीवन किसके लिए है, सुख रहना, सुख देना, उससे भी पहले का क्या है। हाँ देखिए, जीवन का अर्थ ही है, जीवन उसी के लिए है, एक सर्वश्रेष्ठ सत्ता जो है उसको पहचानना है, दैट इज गॉड रियलाइजेशन। हम कितना ना श्रेष्ठ है जो हम रियलाइजेशन तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे भगवान के प्यार के, स्नेह के, उस जो भी उनकी भावना है, लेकिन मुझे परमात्मा को देखना है, साक्षात्कार की बात है, या परमात्मा को मुझे अनुभव करना है। कुछ भी उन्होंने जीवन में अचीवमेंट्स किया होगा, लेकिन उनके जो स्पिरिचुअल इच्छा जो होती है, आध्यात्मिकता इच्छा, उनकी जो भी इच्छा होती है, यही होती है कि मुझे उस परम सत्ता जो है, जो उस ईश्वर गॉड को रियलाइज करना है। वही यहाँ पे दिया है कि कितना भी आप हायर गोल्स को करते जाएंगे, रीच करते जाएंगे, कुछ कितना भी आप साधना करते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट अंतिम सत्य क्या है, गॉड रियलाइजेशन ही है। तो स्टीफन कोवे करके एक साइंटिस्ट है, उसने एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अगर आपको आज मालूम पड़ जाएगा कि आप कल शरीर छोड़ने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? क्या होगी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट? मालूम पड़ गया, बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे बताया टेक्स्ट बुक में कि मुझे आज मालूम पड़ गया कि कल मैं शरीर छोड़ने वाली हूँ, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? क्या आप बोलेंगे बाबा को? तो मैं तो यही बोलूंगी, बाबा मुझे सबकी दुआएं चाहिए, सबके ब्लेसिंग्स लेके मुझे इस शरीर को छोड़ना है। ऐसे यहाँ पे बहुत उन्होंने चिंतन के लिए दिया हुआ कि आप सोचिए कल ही अगर आप शरीर छोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज कौन सा होगा। तो ये था 1.4। 1.1 तो इंट्रोडक्शन था, 1.2 तो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा, 1.3 में क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज के बारे में हमने देखा, और 1.4 में चेंज पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है, किन किन कारणों से चेंज पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जीवन में हमको कैसे रहना है, यूनिवर्सल वैल्यूज इंटीग्रिटी को फॉलो करना है। उसके बाद ये जो नेगेटिव रास्ता जब हम पकड़ते हैं, नेगेटिव वे में हम जब चलना शुरू करते हैं, तो जीवन का चक्र, जीवन का साइकिल कैसे बन जाता है, ये भी हमने देखा। और साथ साथ आज जो क्यों इतने वायलेंस है, वार है, टेररिज्म है चारों तरफ, इसका कारण भी क्या है, ये भी हमने देखा। तो अभी नेक्स्ट है 1.3, क्या था टॉपिक? क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। 1.4 मेकिंग चेंज पॉसिबल। अभी 1.5 है सेल्फ असेसमेंट। तो अभी लास्ट में एक ही हमको मार्ग बचेगा, एक ही रास्ता बचेगा, मुझे खुद को देखना है। देखिए मुरली में इतना चार पेज बाबा हमको कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब काम हमको दे करके बाबा जाते हैं। कभी हमने बाबा को ये काम नहीं दिया है कि आप दूसरों को देखो, लेकिन हम क्या करते हैं, जो बाबा मुरली में काम देते हैं वो छोड़ करके, जो काम बाबा कभी नहीं देते हैं, जिसके लिए मना करते हैं, वही काम सारा दिन करते रहते हैं। तो इसीलिए सेल्फ असेसमेंट, मुझे अपने को देखना है, स्वदर्शन, सेल्फ चेकिंग। तो ये जो फॉलोइंग एरियाज है, वन रिकॉग्नाइज हिज अदर फुल पोटेंशियल इन रिलेशन टू सेल्फ, वन नीड सेल्फ असेस। मतलब मेरा संबंध दूसरों के साथ भी कितना पोटेंशियल है, दूसरों से भी मेरा संबंध कितना गहरा है, कितना हद तक मैं उनके साथ अच्छा संबंध निभा पा रही हूँ, पहले तो अपना फिर दूसरों के साथ का। अपने आप से भी मैं कितना सच्चा हूँ, अपने आप से भी मैं कितना हद तक हॉनेस्ट हूँ, अपने आप से भी कितना हद तक मैं सच्चाई सफाई से चल रही हूँ। दूसरों के साथ चलना, ईश्वर के साथ चलना तो सेकेंडरी है, लेकिन अपने आप से कितना हद तक हूँ दूसरों के साथ। तो इसीलिए फॉलोइंग एरियाज जो है, इस पर हमको सेल्फ असेसमेंट करना है। तो चार यहाँ पे बताया है, पर्सनल, रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल, सर्विस। ये चार बातों में मुझे अपने को देखना है, चारों बातों में मुझे अपने आप पर सेल्फ असेसमेंट करना है। पर्सनल में ग्रोथ आएगी, एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, फिटनेस है, क्रिएटिव है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो इन सभी बातों में पर्सनल चीज, जैसे मेरा ग्रोथ है, जैसे उन्नति, बाबा कहते हैं ना अपने आप को उन्नति करना है, तो मेरा उन्नति कहाँ तक मैं कर पा रही हूँ। ग्रोथ मतलब फिजिकल ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताया है कि किस हद तक, कौन से हद तक मैं अपने आप को उन्नति कर पा रही हूँ। एजुकेशन, मेरा एजुकेशन मतलब हर एक प्रकार के एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्पिरिचुअल एजुकेशन को ही लेंगे तो कितना हद तक वो ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में कितना हद तक ठीक है, फिटनेस, क्रिएटिविटी मेरा कितना ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन, मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, ये सब बातों में पर्सनल अपने आप को मुझे चेक करना है। तो सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है, चार बातों में हमको अच्छी तरह से रिलेशनशिप निभाना है, सेल्फ अपने आप से, गॉड, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स। तो सेल्फ असेसमेंट में मैं क्या चेक कर रही हूँ, इन जो नीचे दी गई है बातें, व्हाट इज माय एक्चुअल स्टेट इन द फॉलोइंग एरियाज, जो नेक्स्ट ये सारी बातें दी गई है इसमें मेरा एक्चुअल स्टेट क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप, खुद से खुद का संबंध कैसा है, मेरा ईश्वर के साथ संबंध कैसा है, इस परिवार के साथ मेरा संबंध कैसा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, कोलीग्स के साथ कैसा है, इसको चेक करना है। लाइफस्टाइल, जैसे कोई घर में रह करके बाबा के बच्चे बने हैं, उनको बैलेंस रखने की जरूरत होती है। अगर हम घर बार को छोड़ के घर में नेग्लेक्ट करके, बच्चों को नेग्लेक्ट करके, पति को नेग्लेक्ट करके, पत्नी को नेग्लेक्ट करके ज्यादा सेंटर पर जाना शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे घर वाले, अगर वो ज्ञान में नहीं है तो। अब जाके उधर ही रहो, हमको आपकी जरूरत नहीं है। क्यों ये होता है, बैलेंस नहीं है, लॉ और लव की भी बैलेंस। बहुत हम लवफुल रहेंगे, बहुत मीठे रहेंगे, जो जो भी बोलता रहे मैं चुप्पी रहता रहूंगी तो वो हमको ओवर पावर करेंगे, मिसयूज करेंगे मुझे। इसलिए बहुत जरूरी है कि बैलेंस, हर एक बात में बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले, किसी से संबंध जोड़ने से पहले, किसी से बात करने से पहले, आगे पीछे दोनों को देख के मुझे बैलेंस रख के आगे बढ़ना है। यूज ऑफ टाइम, समय का सदुपयोग मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ या नहीं कर रही, इन दोनों का भी मुझे देखना है। तो सर्विस, जो मेरा परिवार है उसके लिए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कम्युनिटी के लिए क्या है, व्हाट इज माई डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, हैव आई कॉम्प्रोमाइज्ड। तो खुद से मैं क्या खुद खुश हूँ, अपने आप से मैं खुश हूँ, इसका मुझे चेकिंग करनी है ना। दूसरे मेरे से खुश हो या ना हो, दैट इज सेकेंडरी, सबसे पहले मुझे क्या चेकिंग करनी है, एम आई हैप्पी, हैव आई कॉम्प्रोमाइज्ड, व्हाट इज माई डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। ये इन सारी बातों को पूछ सकते हैं, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में किस चीज के एरिया में आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो तब आपको ये लिखना है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज माय आइडियल स्टेट। तो यहाँ पे मुझे अपने आप को अज्यूम करना है कि द बेस्ट, अगर मुझे अच्छे से अच्छा बनना हो तो मैं कैसे बनूंगी। क्रिएट योर ओन, इमेजिन योर ओन पिक्चर, अपने आप को मोस्ट परफेक्ट एक इमेजिन करके अपने एक चित्र आपके सामने रखिए, तो उसको अपने को कंपेयर करिए कि मैं उस चित्र तक पहुंच पाई हूं या नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, उल्जार दादी जी को बोलते थे कि वतन में जाके संपूर्ण ब्रह्मा को देख के आओ, और मेरे में वो संपूर्ण ब्रह्मा में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ, ऐसे करते थे। ऐसे ही यहाँ पे बताया है कि अपना जो मोस्ट परफेक्ट पिक्चर है उसको आप क्रिएट करो, उसको क्रिएट करके उस पिक्चर और आप में क्या डिफरेंस है उसको आप आइडेंटिफाई करके उस डिफरेंस को मिटाएंगे तो आपका भी परफेक्ट पिक्चर बन जाएगी। अपने आप के बारे में आप क्या सोचेंगे, दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये सब आपको सेल्फ असेसमेंट करना ही है। तो यहाँ पे बताया है कि मेरे पास समय नहीं है, ये एक्सक्यूज आपको नहीं देना है। कुछ भी काम, कोई भी काम के लिए हम इजीली क्या कह देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन टाइम कैसे भी निकाल के, मेरा आइडियल स्टेट क्या है, मेरा करंट स्टेट क्या है, मेरा परफेक्ट पिक्चर क्या है, उस परफेक्ट पिक्चर तक मुझे पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा, इन सारी बातों को आपको देखना ही है, चेक करना ही है। तो जो गैप, अगर आप देखेंगे कि मेरे में और मेरे परफेक्ट पिक्चर में जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए 15 मिनट रोज निकाल के हमको उसके लिए खास टाइम देना है। और जो भी गॉसिप्स है, जो भी वेस्ट है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इधर उधर की बातें हैं, उन सब बातों से आपको अपने को दूर रखना ही है, तभी सेल्फ असेसमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे इफेक्टिव डेलीगेशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव डेलीगेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और इफेक्टिव डेलीगेशन। देखिए इफेक्टिव डेलीगेशन का मतलब जैसे मैंने बताया दूसरों को काम सौंपना, देना, आप करो ये काम, फिर उस पर हमको नजर भी रखना है, अटेंशन भी रखनी है, फॉलोअप भी करनी है, वो काम वो कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, क्या कर रहे, उसका प्रोग्रेस कितना है, ये सब हमको चेक करते रहना है, बीच बीच में उनसे काम लेना है, दैट इज इफेक्टिव डेलीगेशन। हाँ देखिए अगर किसी को हम जाके बोलेंगे कि अगर अपने आप को हम परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन हो सकता है, तो वो क्या बोलेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं, अपने एक व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे पॉसिबल है, ये उनके लिए एक बहुत विचित्र सा सवाल बन जाएगी। तो जैसे इफेक्टिव डेलीगेशन एक एक अगर वन मार्क आपको डेफिनेशन पूछा जाए, इफेक्टिव डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो अथॉरिटी है, उसको दूसरे व्यक्ति को देना ही इफेक्टिव डेलीगेशन है। तो उसके लिए क्या करना है, अब मैं ओनर ही हूं उस काम के लिए, मैं चीफ हूं, मैं इंचार्ज हूं, लेकिन दूसरों से मैं वो काम करा रही हूं, दूसरों से सेवा में करा रही हूं, तो अपने को वहां पर ओनरशिप कल्टिवेट करनी है, उनको भी डिसीजन, जैसे ऐसे नहीं कि मैं मास्टर हूं, मैं मालिक हूं, तो मैं अपना ही बॉस रहूं और सब अपना ही डिसीजन मैं खुद लेती रहूं, उनको मैं डिसीजन के लिए इन्वॉल्व ना करूं, ऐसे भी नहीं है। जो टीम हमको बनाना है वो बनाना है, और वो दूसरे व्यक्ति जो है उनको भी वो टीम के मेंबर्स बनाना है, मिशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमको उसका रिजल्ट क्या निकालना है, ये भी हमको समझाना है, उनको एनकरेज भी करना है। देखिए दूसरों को अगर हम डेलीगेट कर लिया काम को, तो उसमें फेलियर होने की भी संभावना है, दैट इज रिस्क टेकिंग फैक्टर। ऐसा नहीं कि दूसरों को काम सौंप ले, वो अच्छी तरह कर लेंगे, वो हमको सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें मुझे फेल्यूर भी हो सकती हूं, लेकिन टॉलरेट फेल्यूर एज ए पार्ट ऑफ अवर एडवांसमेंट, जो भी आएगा फेल्यूर दैट इज अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। जैसे अगर मुझे मैं फेल्यूर ना हो, मुश्किलातों का अनुभव ना करूं, चैलेंजेस को फेस ना करूं, तो सक्सेस मुझे नहीं मिलेगी। इसीलिए जो भी फेल्यूर आते हैं, स्टेप्स आते हैं, उसको मुझे सक्सेस के लिए पॉजिटिव में लेना है, और जो काम वो कर रहे हैं उनको खुशी खुशी से मुझे कंग्रेचुलेट भी करना है, तभी दूसरों से हम सेवा ले सकते, दूसरों को डेलीगेट हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 4 स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन। तो किसी से मुझे काम लेना है, किसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो 4 स्टेप्स कौन से है, पहला है प्लान एंड चेक, दूसरा है चेक इन ट्रबल, तीसरा है फीडबैक सिस्टम, फोर्थ वन है एब्डिकेशन, इसका मतलब है हैंडिंग ओवर। तो प्लान एंड चेक, पहले प्लान करना है अच्छी तरह की, काम क्या है मेरा, प्रोजेक्ट क्या है, ये काम कैसे चलना है, इसके लिए मुझे आउटपुट क्या निकालना है, क्या मुझे रिजल्ट चाहिए, कितने टीम इस काम के लिए चाहिए, कितना समय चाहिए, अच्छी तरह प्लान करके, उस प्लान को चेक करके, उसके बाद हमको काम को दूसरों को देना है। चेक इन ट्रबल, अगर काम करते करते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ उनको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, उस समय मुझे चेक करना है। तीसरा है फीडबैक, बीच बीच में उनसे मिलना है, मीटिंग करनी है, क्या फीडबैक है, क्या आपका इसका रिजल्ट है, क्या आपका इसका आउटपुट है, ये भी मुझे देखना है। और लास्ट है हैंडिंग ओवर, ऐसे नहीं कि किसी को अपने काम सौंप दे, बीच बीच में उनको जाके डिस्टर्ब करना, बीच बीच में बार बार पूछते रहना, बीच बीच में इंक्वायरी करते रहना, ये भी ठीक नहीं। एक बार उनको काम हमने सौंप दिया तो उन पर विश्वास रखेंगे तो आराम से वो काम हो जाएगा। इसीलिए 4 स्टेप्स, प्लान एंड चेक, चेक इन ट्रबल, फीडबैक सिस्टम, अब्डिकेशन। नेक्स्ट वो शुरू में, और 6 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। तो पहला है क्लियरली डिफाइन द टास्क, जो काम है अच्छी तरह उनको समझाना है, हमको क्या काम है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या हमको उसका आउटपुट चाहिए, क्या हमको उसका रिजल्ट चाहिए, यही मैं उनको क्लियरली नहीं बताऊंगी तो क्या करेंगे वो। जो काम है जो है उसको क्लियरली डिफाइन करना है, और गाइडलाइंस कैसे शुरू करना है उसका गाइडलाइंस भी देना है, अथॉरिटी भी उनको देनी है, इसने काम दे दिया और बार बार जाके उनको डिस्टर्ब करते रहे, बार बार अपना भी उनको कुछ न कुछ बोलते रहे, कुछ न कुछ ठोकते रहे, ऐसा नहीं। उनको अथॉरिटी देना है काम को पूरा करने के लिए, मॉनिटर करना है। ऐसा नहीं कि उनको उनके ऊपर पूरा छोड़ भी देना है, बीच बीच में एज ए साइलेंटली मुझे ऑब्जर्व भी करना है, मॉनिटर भी करना है कि काम कैसे हो रहा है, काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, ऐसे मॉनिटर करना है। लेकिन बहुत उनको अथॉरिटी ना दे करके बीच बीच में उनको डिस्टर्ब करते रहे वो नहीं करना है। और फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक स्टेप्स पर, जैसे एक हफ्ते के बाद 15 दिन में एक बार, बीच बीच में मुझे फीडबैक लेते रहना है कि काम कैसे चल रहा है। और लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है कंग्रेचुलेट करना, रिवार्ड देना, रिकग्नाइज करना दूसरों को। हम कभी महिमा करेंगे, उनको उमंग उत्साह भरेंगे, उनको एनकरेज करेंगे तो अच्छा लगता है ना, और उमंग उत्साह आती जाएगी। ऐसे ये 6 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरा जो डेलीगेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगी। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर इन रेस्पॉन्स टू वैल्यूज, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज देखा, मेकिंग चेंज पॉसिबल कैसे हो सकता है वो देखा, सेल्फ असेसमेंट के बारे में देखा और इफेक्टिव डेलीगेशन के बारे में देखा। जैसे आपको असाइनमेंट में वैल्यूज एंड द चेंज प्रोसेस वो प्रश्न है, सेल्फ असेसमेंट कैसे वैल्यू अडॉप्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, सब कुछ अपने से ही शुरू हो सकती है, इसके बारे में भी लिखना है, पूछा है। इफेक्टिव डेलीगेशन के स्टेप्स क्या है, ये जैसे 6 स्टेप्स आपको बताया उसको ही इन डिटेल आप लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम जैसे 5:30 था उससे पहले ही पूरा हो गया है। थैंक यू, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करके फिर हम सीमा दीदी को इनवाइट करेंगे।